This podcast is an HT Smartcast original. Podcasts for every mood.
क्या आप जानते हैं नारायण ने मोहिनी अवतार ले भस्मासुर का वध कहाँ किया था और किस स्थान पर श्री राम और भ्राता लक्ष्मण ने विद्या प्राप्त की और तारका का वध किया। इस एपिसोड में हम चलेंगे बिहार राज्य के रोहतास जिले के शहर सासाराम में, जहां माँ तारा चंडी भवानी अपने भक्तों को सर्व सुख प्रदान करने के लिए विंध्य पर्वत की कैमूर श्रृंखला में तारा चंडी शक्ति पीठ में अवस्थित हैं। बिहार का सासाराम भारत के प्राचीनतम स्थानों में से एक है। सतयुग में जब यहां माता सती की दाहिनी आंख आकर गिरी, तब से ये स्थल अद्भुत शक्तियों का केंद्र हो गया। माँ की आंखें तारों की तरह खूब चमकती हैं। इतनी सुंदर आंखों को देख कोई भी व्यक्ति भाव विभोर हो उठता है। ये देखकर महर्षि विश्वामित्र ने इस शक्ति पीठ का नाम तारा चंडी शक्ति पीठ रखा और साथ ही उन्होंने यहाँ अपना आश्रम भी स्थापित किया।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे।
तारा चंडी शक्ति पीठ का अपना गौरवपूर्ण इतिहास है। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर देवी सती के दाई आंख का निपात हुआ था। इस शक्ति पीठ के पास ही गुड़ैल पर्वत है, जिस पर तारका राक्षसी रहती थी। ऋषि विश्वामित्र का आश्रम इसी शक्ति पीठ स्थान पर था। भगवान राम और भाई लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञों को राक्षसों से बचाने जा रहे थे, तब रास्ते में तारका राक्षसी मिलती है। तब महर्षि विश्वामित्र के आदेश का पालन कर भगवान श्री राम ने राक्षसी तारका का वध किया। आज ये स्थान बक्सर कहलाता है। शक्तिपीठ मंदिर के निकट महर्षि विश्वामित्र ने इसी आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण को दीक्षा दी थी। कालांतर में गौतम बुद्ध बौद्ध गया से सारनाथ जाते समय अपने शिष्यों के साथ 21 दिन तक इस स्थान पर रहे और उन्होंने मां भगवती की तारा रूप में उपासना की, जिसका उल्लेख मंदिर के गर्भगृह में लगे पत्थर पर पाली भाषा में उत्कीर्ण है। फिर वे देवी मां का आशीर्वाद लेते हुए सारनाथ की ओर बढ़े। मंदिर के निकट ही एक गुरुद्वारा भी है, जहां पर गुरु तेग बहादुर ने अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ रहकर माँ तारा चंडी का पूजन व उपासना की थी। आज भी सिख संप्रदाय यहां आकर और 3 दिन ठहरकर अरदास, जल क्रीड़ा और पूजा करता है। यहां वर्ष में 3 दिन गुरु महाराज जी की याद में गुरु ग्रंथ साहिब का राजभोग अरदास पाठ होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार महिषासुर के 2 सेनापतियों चंड और मुंड में से चंड का वध भगवती ने इस स्थान पर किया था, जिससे वो चंडी के नाम से विख्यात हुई। सासाराम से 60 किलोमीटर दूर तारा चंडी माँ मुंड का वध करके मुंडेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। तारा चंडी शक्ति पीठ के पास ही कैमूर की पहाड़ियों पर ही भगवान शिव का एक मंदिर स्थित है, जिसे गुप्त धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ की मान्यता है कि भस्मासुर को वरदान देने के बाद भस्मासुर से ही बचने के लिए भगवान शिव इसी गुफा में आकर छुपे थे। भस्मासुर की कहानी बहुत रोचक है। भस्मासुर एक ऐसा चरित्र है जो पुराणों में प्रकट नहीं होता है। क्षेत्रीय साहित्य में उसकी कहानी का उल्लेख है। भस्मासुर ने भगवान शिव को तपस्या करके प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने उसकी महान भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपना मन पसंद वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा, प्रभु, मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं, वो जल कर भस्म हो जाए। भोलेनाथ तो भोले ही हैं। उन्होंने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। भस्मासुर वरदान पाकर अभिमानी हो गया और कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बुरा स्वप्न बन गया। वो भगवान शिव को ही भस्म कर देना चाहता था। तब भगवान शिव इस गुफा में आकर छुप गए थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, जो कि एक आकर्षक नर्तकी का रूप था। भस्मासुर को उन्होंने अपने आकर्षण से आकर्षित किया और मुक्तांत्य नामक एक नृत्य की शुरुआत की। इस नृत्य के दौरान उन्होंने मोहवश भस्मासुर को अपने ही सर पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर दिया। जिस क्षण उसका हाथ उसके ही सर पर लगा, वो जलकर भस्म हो गया। इस पावन शक्ति पीठ पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का उसी के हाथों वध किया और भगवान शिव की जान बचाई। सावन में श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ अनगिनत हो जाती है। माँ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है, इसीलिए लोग इन्हें मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना से 155 किलोमीटर और 4 घंटे की दूरी पर सासाराम में स्थित है माँ तारा चंडी शक्तिपीठ, जहाँ पर देवी सती की दाई आंख का निपात हुआ था। मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, लेकिन मंदिर के गर्भगृह के निकट संवत 1229 का खरवार वंश के राजा प्रताप धवल देव की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख रखा है, जो मंदिर की ख्याति एवं प्राचीनता को दर्शाता है। ये शक्तिपीठ पहाड़ियों के बीच में बसा है। ये पूरा ही क्षेत्र बहुत सुंदर है। मंदिर पहुंचने के दो रास्ते बनाए गए हैं, एक रास्ता जो सासाराम शहर से होकर आता है, दूसरा जो सीधे राष्ट्रीय हाईवे NH2 से आता है। इस हाईवे के बिल्कुल पास ही ताराचंडी शक्तिपीठ स्थित है। मंदिर की ओर जाते ही बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप प्रसाद और माता की चुनरी ले सकते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य है, जिसको सफेद मार्बल से बनाया गया है और द्वार के दोनों ओर ऊपरी हिस्से में बाघ की मूर्ति है। जैसे ही हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ेंगे तो हम एक कतार में लगकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। गर्भगृह में पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य शक्ति चारों ओर फैली हुई हो। गर्भगृह के अंदर देवी तारा की मूर्ति स्थापित है। माँ का मुख और उनका मुकुट दोनों सोने से बनाया गया है। माँ ने लाल रंग की साड़ी पहनी है और गले में एक फूल की माला सुशोभित हो रही है। माँ की मूर्ति देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे अब यहीं रह जाओ, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ का आशीर्वाद लेकर दीप जलाकर भक्त माँ की आरती करते हैं। माँ का सुंदर स्वरूप और इस स्थान की पावन ऊर्जा को लिए भक्त गर्भगृह से बाहर निकलते हैं। मंदिर के परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं। ये 3 मंजिला मंदिर है, जिसमें कुछ मंदिर निचले तल पर भी है तो कुछ सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर जाने पर दर्शन होते हैं। गर्भगृह के बाहर यज्ञ वेदी है, जिसमें देवी यज्ञ होता है। आप भी यहाँ यज्ञ करा सकते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही एक बड़ा प्रांगण है, जिसमें माँ दुर्गा, भैरव बाबा, भगवान राम, लक्ष्मण, देवी सीता और हनुमान जी के मंदिर स्थापित हैं। स्थानीय लोग इस शक्तिपीठ में विवाह करवाते हैं। उनका मानना है कि यहाँ शादी करने वाली जोड़ी को माँ आशीर्वाद देती हैं और वो शिव पार्वती की तरह सदैव एक दूसरे के पूरक बनकर अपना जीवन प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से व्यतीत करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसी प्रांगण में एक मस्जिद भी है, जो हमेशा बंद रहती है। मंदिर के पास ही परशुराम कुंड भी है, जो माँ तारा चंडी के चरणों को पखारता है। श्रद्धालु इसी कुंड में स्नान करके माँ तारा चंडी की पूजा व उपासना करते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी झीलें हैं, जिनमें पानी केवल बरसात के दिनों में या कभी बिन मौसम बारिश हो जाए तो भर जाता है। ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ हर वर्ष चैत्र सप्तमी को माँ तारा चंडी महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इस महोत्सव में भोजपुरी फिल्म जगत के बड़े बड़े कलाकार अपनी उपस्थिति देते हैं और देवी माँ का आशीर्वाद लेकर उनकी भक्ति में पूरी रात जागरण करते हैं और भजन गाते हैं। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का आना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की हर मनोकामना माता रानी अवश्य ही पूर्ण करती है, इसलिए लोग इन्हें मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। नवरात्रि का त्यौहार यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। शाम की आरती के समय कम से कम 1000 श्रद्धालु मंदिर के चारों ओर माँ देवी तारा चंडी की आरती में शामिल होते हैं और बहुत ही मन से आरती करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे है और रात्रि के 9 बजे तक ये मंदिर दर्शनों के लिए खुला रहता है। आइए जानते हैं कि हम यहाँ तक आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। आप यहाँ से 3 घंटे में इस स्थान पर पहुँच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन सासाराम है, जो तारा चंडी मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ से आप रिक्शा या ऑटो से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो आप लोग भी तारा चंडी शक्ति पीठ के दर्शनों के लिए आइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और इसके दिव्य इतिहास के साक्षी बनिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे राजस्थान के भरतपुर में और दर्शन करेंगे माँ अंबिका शक्ति पीठ के, जहाँ माँ के बाएं पैरों की उंगलियों का निपात हुआ था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @htsmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।